श्रीमद् भगवद गीता यथारु अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 9। एताम् दृष्टिम् अवष्टभ्या नष्टात्मानुवल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः शयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग, ऐसे निष्कर्ष अर्थात ईश्वर अंततो गत्वा निराकार है, या ये पूरा जगत जो है ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, या काम के अलावा और कोई कारण नहीं, इस प्रकार की निष्कर्षों से जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि वह इन कार्यों और इन सिद्धांतों का आश्रय लेते हैं जो उनके अनुसार होते हैं, यानी जो तीन हम लोगों ने चर्चा करी थी, निराकारवादी बौद्ध धर्म के विचार और उसके अलावा चार्वाक विचार, ये तीन सिद्धांत जो हैं उनके अनुसार जो व्यक्ति का इस प्रकार की विचारों से पूरित होता है तो ऐसे कार्यों में लगेंगे, उनको लगना ही होगा ऐसे कार्यों में जो जगत का अहित करेंगे। दृष्टिम शब्द यह जो है ये इंगित करता है कि जितनी भी ये जो आसुरिक सिद्धांत हैं उनको एक साथ एक समूह में करके कि इस प्रकार की दृष्टि से युक्त होकर के व्यक्ति गलत कार्य ही करता है। अवष्टभ्य का अर्थ है कि इस प्रकार की गलत सिद्धांतों का वो सहारा लेते हैं और ऐसे मूर्ख लोग अल्प बुद्धि होते हैं। यहाँ पे शब्द आया है अल्प बुद्धयः, तो उनकी बुद्धि बहुत अधिक नहीं होती है और उनके जो मतामत होते हैं उनमें भी कोई दम नहीं होता है। साथ ही नष्टात्मानः अर्थात वह आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं देख पाते हैं और इस कारण से उग्र कर्माणः अर्थात भोग के कार्यों में दूसरों को दुख देने वाले कार्यों में अपमान करना और हिंसा करना ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं और इसी कारण से वो पूरे जगत के शत्रु होते हैं, जगत अहितः। और शयाया प्रभवंती अर्थात जो आध्यात्मिक सत्य है उसको नाश करने में लगे रहते हैं। तो मुख्य बात आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति का एक जीवन में एक सिद्धांत होता है, एक निष्कर्ष होता है, फिलॉसफी होती है। तो अगर वह फिलॉसफी ईश केंद्रित नहीं है, कृष्ण केंद्रित नहीं है, तो वह जगत के अहित के लिए कार्य करेगा ही। तो इसलिए आवश्यक है कि भक्तों के संग में आकर व्यक्ति अपनी जीवन की जो फिलॉसफी है, धारणा है, उसको जरूर ठीक कर ले, नहीं तो उसके कार्यों में दूसरों का कल्याण करने की क्षमता हो ही नहीं सकती। अपितु ऐसे लोग जिस प्रकार से सोचते हैं कि दूसरों का कल्याण होगा उसी के द्वारा लोगों का अहित होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, आसुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। अब आप ये देख ही रहे हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि लोग ऐसे ही मर रहे हैं और लोगों ने डायनामाइट और नाभिकीय बम का आविष्कार कर लिया जिससे लोग और जल्दी मर जाएं, तो ये कौन सी प्रगति है? तो आप देख सकते हैं कि संसार का विनाश हो जाए ऐसी प्रवृत्ति में असुर लोग खूब लगते हैं। भगवान यहां कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, अल्पबुद्धया भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वह प्रगति कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगह की बाह्य दृष्टि से भौतिक रूप से उनकी बुद्धि बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन जब तक वह अपने आप को नहीं समझते और भगवान से अपने संबंध को नहीं समझते तो सही पशु बड़ो दुराचार। वो एक पशु की तरह जीते हैं कि बुद्धि भी और दुराचार होता है, उनके जीवन में कोई सदाचरण नहीं होता है। लेकिन भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही नहीं समझ पाए कि आत्मा में और शरीर में क्या अंतर है और इस जगत के ईश्वर भगवान कौन है। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और मनुष्यों के प्रति भी। तो इसको तो समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इस जगत में लोग बहुत विशाल स्तर पर पशुओं के प्रति हिंसा कर रहे हैं। सोचिए जितना पशुओं के प्रति हिंसा हो रही है, अगर उस प्रकार की हिंसा इंसानों के प्रति होती तो क्या इंसानों का समाज उस हिंसा को सहन कर लेता? तो पशुओं के लिए जो इंसान का समाज है वह तो प्रायः एक राक्षसों की तरह देखा जाएगा। किस प्रकार से वो हनन कर रहे हैं गायों का या अन्य पशुओं का, उनको उनको काट रहे हैं। खैर बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सारा क्या है, केवल जीव की लालसा के लिए, जीव को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति इस प्रकार से गलत कार्य कर रहा है। और इस संबंध में ऋषभदेव जी बोलते हैं, नूनम प्रमत्ता कुरते विकर्मा, यहाँ पे है उग्र कर्मा, वहां बोलते हैं विकर्मा, यदिंद्रिय प्रीतम आपनोति। तो वहां पे भी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग पागल हैं। यहाँ पे शब्द आया है अल्पबुद्धया, वहां भगवान बोल रहे हैं ये लोग पागल हैं और प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण पागल, बहुत अच्छे से पागल हैं। क्यों क्यों पागल हैं? क्योंकि हमेशा विकर्म में लगे हैं, हमेशा पाप में लगे हैं जो आगे उनको नरक लेके जाएगा। और क्यों लगे हैं, क्या वो जानते नहीं है? वो जाने तो भी क्योंकि इंद्रियां खींच रही हैं, इसलिए वह उग्र कर्म में लगे रहते हैं, विकर्मों में लगे रहते हैं और जगत का अहित ही करते हैं। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस तरह व्यवहार किया जाए। आश्रित लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः जैसे आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं कि हिरणाक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में गिरा दिया, इससे क्या उसका क्या लाभ हो गया? कोई लाभ नहीं हुआ। तो यही दिखाते हैं कि ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग केवल दूसरों के अहित के लिए ही कार्य करते हैं। ये आज भी आप देखिए जितने भी आविष्कार हुए हैं उससे प्रकृति को नुकसान ही पहुंचा है। जैसे थोड़ा उदाहरण दें अगर कि कार का आविष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इंग्लैंड में वो सोचते थे कि घोड़े जो हैं वो जगह जगह मल त्याग देते हैं तो रोड खराब हो जाती है, और चलने की जो गति थी एवरेज स्पीड जिसे कहा जाता है वो थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अद्भुत बात यह है कि कारों का आविष्कार होने के बाद, इतनी शक्तिशाली कारें होने के बाद भी इतना ट्रैफिक है कि जो चलने की गति है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही, लेकिन कितना प्रदूषण बढ़ गया। तो हम देखते हैं इसका उदाहरण एक भक्त दिया करते हैं कि ये जो साइंटिस्ट हैं यह कैप खोलना तो जानते हैं लेकिन कैप बंद करना नहीं जानते बोतल की। एक बोतल की कैप खोल देते हैं, कुछ नया आविष्कार कर लेते हैं, लेकिन वह स्वयं किस प्रकार से नुकसान करता है प्रकृति का उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रकृति के संग में चलने की उनकी शक्ति नहीं होती। और आज भी हम देख रहे हैं कि नए नए प्रकार के बीज वगैरह बना रहे हैं और रिसर्च करके, जिससे केवल लोगों की शरीर में विकृति ही आ रही है। तो ये सब बहुत उग्र कर्म है कि कोई आवश्यकता नहीं करने की लेकिन फिर भी इसमें लगे रहते हैं। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहां पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए कि अगर मैं सोचूं कि मेरे पास एक चक्कू है और दूसरे वाले व्यक्ति के पास एक चक्कू है, और हम क्योंकि हम दोनों के पास चक्कू है या कोई पिस्तौल है तो इसलिए हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, तो क्या ये शांति का सूचक है? तो उत्तर स्पष्ट है कि इससे कोई शांति उपलब्ध नहीं होगी। अभी तो जब हमारा मन शांत होगा तब हम शांत हो सकते। तो उसी प्रकार से आजकल के लोग सोच रहे हैं कि एक राज्य के पास अगर अस्त्र हैं तो मेरे पास अगर बहुत अस्त्र होगा तो फिर मैं शांति रह सकता हूं। लेकिन शांति राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तब होगी जब लोग व्यक्तिगत रूप से शांत होंगे, और अगर व्यक्तिगत रूप से शांत नहीं है तो सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से युद्ध होना ये अवश्यंभावी है। तो इसका मुख्य कारण है राक्षसी सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। हरे कृष्णा।